Hare Krishna. This lecture on Bhagavad Gita, Chapter 2, Shloka Number 8, given in All India Institute of Medical Sciences on 21st June 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Bhagavad Gita ke dusre adhyay ka 8th shloka padhne ja rahe hain. Pichli baar humne padha karpanya dosham upahat swabhava. To jab nirbalta ke karan अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ. तो अब आज हम इस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, साथ में दोहराएंगे.
ना ही प्रपश्यामि मम अपुनोदतात् यशोकम मुचोणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमास्पतनम रिद्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम. नाहि प्रपश्यामि माम अपनुदो अपनोधात् यच्छोकमच्छोणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमोऽस्पतनम् रेधम् राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम. नाहि प्रपश्यामि मम अपनुधा अपनोधा यशोकम शोणाम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमोऽस्पतनम् रिद्धम् राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम्.
अनुवाद पढ़ेंगे. मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके. स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा. तो यहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके. तो वो शोक मग्न है, शोक में है, पूरे डूबे हुए हैं शोक के अंदर. हम लोग भी डूब जाते हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो शोक में डूब जाते हैं. और फिर हमारी को ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा होता कि हम कैसे इस शोक से दूर आए. तो अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर जो सारे के सारे स्वर्ग में राजा हैं, अगर मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत भी जाता हूं तो सारे के सारे राज्य को प्राप्त करके भी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके, निष्कंटक मतलब कि कोई और उसके अंदर व्यवधान नहीं डालेगा, मैं अकेला अधिपति होऊंगा इसका, तो मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा. किस शोक को? कि मैंने अपने हाथ से अपने भाइयों को मार डाला, अपने गुरुजनों को मारा, अपने पितामह को मारा, उसके बाद उनके खून से सनी उस पृथ्वी पर राज्य कर रहा हूं. तो अच्छा थोड़ी लगेगा हमको भी ऐसा. तो अर्जुन भी इस तरह की बातें कर रहा है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को क्या कहा, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका कौन हूँ, शिष्य हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ. तो भगवद गीता का ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो तब तक हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता जब तक हम किसी के शरणागत नहीं होते हैं. भगवान के शरणागत नहीं होंगे या गुरुजनों के शरणागत नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है. जब तक व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तब तक वो कुछ नहीं जानता होता. सच्चाई ये है, जब तक वो सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तब तक वो कुछ नहीं जानता होता। आप किसी को भी बोलिए ना, कृष्ण भगवान है, हम मंगलवार को गीता क्लास में जाते हैं, तो क्या बोलेगा? जो व्यक्ति भक्त नहीं होगा क्या बोलेगा? हाँ, क्या बोलता है? आप लोगों क्या बोलते हैं लोग, फैमिली वाले, रिलेटिव्स? हाँ, पागलपन है, क्या करने लगे हो, ये कोई उम्र है, ऐसे किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए, आजकल बड़ा ढोंग चल रहा है। तो ये सारे लोगों को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसका मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं। और जो ये कहता है कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सच्चाई में वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है चैतन्य चरित्रामृत, चैतन्य के चरित्र का अमृत। चैतन्य महाप्रभु के समयकालीन में एक भक्त हुए, उनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने एक भागवत लिखा जिसका नाम है चैतन्य भागवत। जैसे श्रीमद् भागवत है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है चैतन्य भागवत। जिस तरह से श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने लिखा, ऐसे ही चैतन्य भागवत को किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर ने। तो उनको कलयुग का वेद व्यास बोला गया। द्वापर युग के वेद व्यास थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना, जिनके पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, और जिन्होंने श्रीमद् भागवतम, अनेकों पुराण, महाभारत ग्रंथ की रचना करी, है ना। लेकिन उसी तरह से जब कृष्ण भगवान ने लीलाएं करी, तो जब भगवान कलयुग में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? हाँ, किस रूप में आते हैं भगवान? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कलयुग में कैसे आते हैं भगवान, बोलिए सब लोग, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। राधा कृष्ण नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो भक्त बोले भगवान कृष्ण के अवतार। तो महाप्रभुपाद जी ने कहा, गलत, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो वही लीला तो करेंगे जो लीला उन्होंने कृष्ण रूप में अपने द्वापर में करी। तो भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया। आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु को सिर्फ इस्कॉन वाले कहते हैं, भगवान है, बाकी लोगों के यहाँ तो हमें पता नहीं, मूर्ति भी नहीं देखी किसी ने वहां चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन महाप्रभु क्यों अपनी लीला सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं? क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है उसे कहते हैं छन्ना अवतार। कौन सा अवतार? छन्ना अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार। हाँ, श्रीधाम मायापुर हर एक व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होता है। सिर्फ गौड़िया वैष्णव भक्त जानते हैं कि मायापुर नाम की कोई नगरी है और वहां पर राधा माधव अष्ट सखी अनेकों भगवान वहां पर विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो भौतिक जमाने के सामने प्रकट नहीं होता है। अच्छा, आईएएस का जो ज्ञान है वो कॉमन आदमी को मालूम होता है? हाँ, कॉमन आदमी को तो बीएससी पता होती है, एमसीए पता होता है, एमबीए पता होता है, आईएएस तो टफ लगता है, तो इसलिए कुछ कुछ लोगों को ही सिलेक्शन मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हर एक को नहीं मिलती है। आप अपने कंपेयर करेंगे अपने मोहल्ले में, अपने नेबर में, अपने रिश्तेदारों में, कि हम सबको तो, हमें तो मालूम है, इनको तो मालूम नहीं, और वो आपको बोलेंगे आप तो ढोंगी हैं, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं, आप तो गलत पढ़ रहे हो। तो इस तरह से वो इस तरह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने वही लीला करी जो कृष्ण रूप में की, अपना वरा अवतार दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया, अपना छठ भुज रूप दिखाया, छह हाथों वाला, जिसमें एक में उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है और एक हाथ में है क्या, उनके धनुष बाण, एक हाथ में उनके मुरली है, दो हाथों में मुरली है, और एक हाथ में डंडा है संन्यास का, और एक हाथ में कमंडल है। तो उन्होंने रामचंद्र, कृष्ण और चैतन्य तीनों रूप एक भक्त को दिखाए अपने। हाँ, तो इस तरह से भगवान ने अनेकों भक्तों को दर्शन दिया अनेकों बार कि मैं कृष्ण हूं। हाँ, इस बात का स्थापित किया कि मैं भगवान हूं, स्वयं भगवान हूं, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा क्यों आते हैं? वाय, भगवान आते हैं इसलिए ताकि भगवान ने कृष्ण रूप में अपना ज्ञान अर्जुन को दिया, और अर्जुन को ज्ञान देने के बाद भगवान चेक करना चाहते थे कि लोग इसको अपने जीवन में क्या करें, पालन करें। श्रवण की क्रिया के तीन वर्ग हैं, श्रवणम, कीर्तनम, निधिध्यासन। क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, निधिध्यासन। मतलब श्रवण मतलब सुनना, तो मंगलवार को हम सुनते हैं। फिर है कीर्तनम, फिर पूरे हफ्ते हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार में उसकी टीचिंग्स देते हैं, बोलते हैं।
फिर है निधिध्यासन, मतलब अपने जीवन में उसको अपनाना, ये मुश्किल है। सुनने बोलने तक तो प्रभु जी ठीक है, अपनाने वाले टाइम पे आके थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सबको बोलते हैं माला करो, लेकिन अपनी खुद की गड़बड़ हो जाती है। तो निधिध्यासन, जिस दिन व्यक्ति ने अपनाने वाली क्रिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, आसन उसको बोला है निधित आसन। आसन मतलब एक स्थान पर बैठ करके भगवान का जप करना। ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कोई व्यक्ति अपना ही नहीं रहा। अभी मैंने ज्ञान दिया कि कौन हूं, मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो, हाँ मुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, मैं ही हूं भगवान। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय कालीन के बाद लोगों ने गौतम बुद्ध को भगवान माना, शंकराचार्य को भगवान माना, मोहम्मद जी आ गए, गुरु नानक जी आए और अनेकों अनेकों लोग आए, और इतने सारे धर्म परिवर्तन हो गए, लोग कृष्ण भगवान को भूल गए जो स्वयं भगवान है। तो इस बात को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 वर्ष पूर्व मायापुर धाम में स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, तो वो यही चीज दिखा रहे हैं कि अर्जुन को क्या बोला, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। तो चैतन्य महाप्रभु भी शिष्य बनकर आए और उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो कृष्ण से आती है, आपकी भगवत गीता के शुरुआत में 32 गुरुओं के नाम दिए हैं इसके फर्स्ट पेज के ऊपर 32, जिसमें 32 नंबर पे हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप देखेंगे उसके अंदर सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ज्ञान किसको दिया है, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र है नारद जी, उन्होंने ज्ञान दिया नारद जी को। नारद जी ने ज्ञान दिया है माधवाचार्य को। तो ये कोई वो ज्ञान नहीं है पंडाल लगा के बाबा जी से पूछो आपके गुरु कौन है तो मालूम नहीं, बोले मैं ही गुरु हूं, गुरु से पूछता है पापी शिष्य, इस तरह से जो बोले वो व्यक्ति बहुत गड़बड़ है। गुरु वो है, कौन है गुरु, जो अपने गुरु का पालन करता है। वो उसका गुरु कौन है, जिसने अपने गुरु का पालन किया। तो आप कभी भी किसी से जुड़ना चाहें, अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना चाहें, तो उससे पूछिए आपके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु के गुरु कौन। और ये गुरु परंपरा क्या जाकर कभी कृष्ण से मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो व्यक्ति भगवान की चाहे कितनी बातें करे वो क्या है, परंपरा विहीना मंत्र निष्फल मतः। परंपरा विहीन व्यक्ति के द्वारा दिया गया मंत्र निष्फल है, इसीलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बचपन से कथाएं सुन रहे हैं, बहुत सारे पंडाल प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण से आने वाली परंपरा को नहीं पकड़ा है। तो इसलिए हमें पकड़ना पड़ेगा ऐसी परंपरा। इसको बोलते हैं इस्कॉन, जो है इस्कॉन तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक नाम दिया क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी थी, यहाँ पूरे विश्व में इसका प्रचार करना था, अन्यथा इसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा जी, गौड़ीय का मतलब है माधव, का मतलब है माधवाचार्य, और गौड़ीय का मतलब है बंगाल जो देश है ना उसको बोलते हैं गौड़ीय देश। वहां चैतन्य महाप्रभु आए गोरे रंग के, इसलिए उसका नाम हो गया गौड़ीय देश। हाँ, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस परंपरा को आकर क्या करते हैं, शिष्य बनते हैं। इसलिए यहाँ शिष्य बनने की बड़ी योग्यता इस श्लोक में दी गई है कि हमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए। और शिष्य जो होता है ना वो एक दिन जाकर गुरु बन जाता है अपने आप में। चैतन्य महाप्रभु ने कितने सारे अपनी परंपरा में शिष्य बनाए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें 87 शाखाएं, कितनी 87 शाखाएं चैतन्य महाप्रभु से निकलती हैं। और उन 87 शाखाओं के बाद में भी जो इसके रचयिता थे, कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा। तो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले जो कृष्णदास कविराज हैं वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनगिनत शिष्य थे, अनगिनत पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो सोचिए, खुद उन्होंने शिष्य बनकर ईश्वरपुरी से ज्ञान लिया और खुद आगे अनेकों शिष्य बनाए। तो अगर हम कभी चाहते हैं कि हम गुरु बने, तो गुरु बनने की इच्छा के बारे क्या क्या इच्छा होनी चाहिए, शिष्य बनने की इच्छा होनी चाहिए। तो यही अर्जुन यहाँ पर क्या बन रहे हैं, शिष्य। और चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक व्यक्ति से मिले, उनका नाम है रामानंद राय। रामानंद राय, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा आता है चैतन्य चरितामृत में। उनसे पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा दुख क्या है। अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, पता है क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रामानंद राय कलयुग में अर्जुन का अवतार है। भगवान ने गीता का ज्ञान द्वापर युग में दिया और फिर टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आए और रामानंद राय से पूछा, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो क्या है सबसे बड़ा दुख, बताइए आप लोग। हाँ जी, हाँ, भगवान को भूल जाना, ठीक है। और माता लोग? हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ, भक्तों का संग ना मिलना, ये सबसे बड़ा जो है दुख है जीवन का। हाँ, और सबसे बड़ा सुख क्या है? भक्तों का संग मिलना, हाँ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये सबसे बड़ा सुख है। तो हर मंगलवार को आपको एक घंटे सुख की असीम कृपा मिलती है, क्यों? हम सब भक्त हैं, सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, प्रसाद पाते हैं, कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, गले मिलते हैं, तो ये बड़ा सुख की बात है। तो ये रामानंद राय से भगवान ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने उत्तर दिए, तो वो अर्जुन थे। और वही अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। तो कहते हैं ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान किया जाता है, लिया जाता है संसार में। लेकिन ज्यादातर लोग कैसे हैं? ज्ञान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं एक टाइटल जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर है, कौन सा टाइटल? हाँ, राय साहब, पहले बोला है हमने शायद, हाँ, राय साहब। दो चीजों की राय जरूर देते हैं, एक तो भगवान कौन है और एक आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। कैंसर जैसे पेशेंट को भी रिश्तेदार आकर छोड़ते नहीं है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, गिलोय पी लीजिए, व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है वो गिलोय से ठीक होगा। हाँ, तो इस तरह से गिलोय का सिस्टम है लंबा, उसे बहुत समय कालीन लगेगा, तो व्यक्ति की सर्जरी हो रही है उसको सजेशन देते हैं। तो राय साहब, सारे राय हैं यहाँ पे संसार में। और भगवान कौन है? रिक्शे वाले से भी पूछ लो या किसी बड़े आईएएस से पूछ लो, हर एक व्यक्ति एक ही जवाब दे। मुझे जो पता है ना, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, इसका मतलब हमें कुछ भी। और भक्त से आप कभी पूछेंगे ना, प्रभु जी आपको तो बड़ा ज्ञान है, तो भक्त क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ सीखने का। वो सही व्यक्ति है। एक्चुअली आपको पता लगाना हो ना, 100 रुपए का असली नोट कौन सा है, नकली कौन सा है, 500 का नकली कौन सा, असली कौन सा है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो ऐसे ही पता लगाना है कि ये व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, तो उससे पूछिए, अरे आपको तो बड़ा ज्ञान है, तो क्या बोलेगा? हाँ 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 हाँ, तुम भी आया करो, ज्ञान लिया करो। हाँ, गड़बड़ है। वो बोले आपको बड़ा ज्ञान है, वो बोले जी कहाँ, हम तो प्रयास कर रहे हैं, ठाकुर जी को समझना इतना आसान है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम अपने जीवन काल में क्या समझेंगे ठाकुर जी को, हम तो बस अपनी गुरु की इच्छा के लिए आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। तो गाइडलाइन है, दिया हुआ है कि कैसे पता करें कि 500 रुपए का ये सही नोट है या नकली नोट है। तो आप लोग फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, अगर आप सही भक्त को नहीं ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए इलाज नहीं होता है ना, गली मोहल्ले में छोटा डॉक्टर होता है ना, झोला छाप। हाँ, अभी एक सर्वे में बताया 70% क्वैक्स इन दिल्ली जिनकी नकली डिग्रियां हैं। हाँ, और वो व्यक्ति इलाज कर देते हैं लोगों का, और लोग कराते रहते हैं, दवाइयां नीली पीली हरी डाल कर देते हैं, नाम भी नहीं लिखते उसके ऊपर दवाइयों का। हाँ, और ऐसे व्यक्ति जो है इलाज करते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती, व्यक्ति मर जाता है, और लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन ही गलत है। लेकिन ऐसा है क्या? जिस व्यक्ति को सच्चा इलाज कराना होता है वो कहाँ आ जाता है? एम्स में आ जाता है, क्योंकि एम्स में क्या है, ऑथराइज डॉक्टर है। तो ऐसे अगर आपको सही इलाज कराना है तो कहाँ आना चाहिए? इस्कॉन में आना चाहिए। और इस्कॉन में फिर जो इस्कॉन के ऑथराइज सर्जन है वो आपका इलाज करेंगे, आपका जो भव रोग है, इस संसार की आसक्ति का रोग, उसको समाप्त करेंगे। फिर वो आपको दवाई देंगे, प्रोसीजर्स बताएंगे, आप उसको पालन नहीं करेंगे तो फिर एम्स की गलती थोड़ी है, अगर आप पेशेंट पालन ना करे, दवाई ना ले, प्रोसीजर ना करे। तो इसी तरह से इस्कॉन की गलती नहीं है अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ने के बाद उसका पालन नहीं कर रहा। हाँ, तो इस तरह से शिष्य बनना बहुत जरूरी है। ज्ञान दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। लेने के लिए हर मंगलवार आना पड़ेगा। हाँ, उत्साहित होकर, उत्कंठित होकर आना पड़ेगा। हाँ, उत्कंठित का मतलब है अपने कंठ को ऊपर करके सुनना पड़ेगा, नीचे करके आंख बंद करके सोने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कई लोग सो रहे हैं नीचे गर्दन करके, तो सोचते एक घंटा सो जाएंगे, सत्संग में गए थे जी कृपा मिली, सत्संग में सोने से कृपा नहीं मिलती है, सत्संग को सुनने से, अपने जीवन में अपनाने से कृपा मिलती है। हाँ, तो ये है। तो बताते हैं वाल्मीकि जो थे, उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु को ग्रहण किया और गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कौन थे गुरु? नारद जी। नारद जी ने कहा एक जगह बैठकर जप करिए। वो एक डाकू थे रत्नाकर, और उनका क्या काम था? लूटना लोगों को। तो एक बार जब नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा, ओ संत इधर आ, तुझे भी लूट लूंगा। तो नारद जी बोले, नारायण नारायण, मुझको लूटोगे? हाँ, एक संत को लूटोगे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा, तो नहीं है तो फिर चल मुझसे कुछ ले जा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, एक पेड़ की डंडी तोड़ कर दे दो। तो उन्होंने एक डंडी तोड़ी और उनको दे दी। कहा, आपने ये डंडी तोड़कर क्यों दे दी मेरे को? अब इसे वापस जोड़ दीजिए, मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी। तो बोले, कौन सी चाहिए थी? बोले, वो वाली चाहिए थी। तो उन्होंने फिर वो डंडी तोड़ के उनको दे दी। उन्होंने कहा, ये भी नहीं चाहिए थी। कह रहे, क्या बार बार परेशान करते हो? कह रहे, मैं तो आपसे बोल रहा था, आप मुझे डंडी वो वाली चाहिए थी, आपने ये दोनों डंडियां तोड़ दी, इन्हें जोड़ दो, वो वाली दे दो। तो उसने कहा, मैं नहीं तोड़ूंगा और ना मैं जोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा, जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें तोड़ने का हक किसने दिया? तो उसने कहा, मतलब, अरे तुम इस संसार के लोगों को मारते हो, उनसे लूटते हो, तुम्हें किसने ये इजाजत दी कि तुम किसी को हानि पहुंचाओ? अगर तुम उसको फायदा नहीं कर सकते तो हानि का हक किसने दिया? ऐसे लोग नॉनवेज खाते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, गाय को काट देते हैं, भैंस को काट देते हैं, कुत्ते को भी काट देते हैं, लोग चिपकली भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनको किसी ने हक दिया? अगर एक जानवर प्रकट नहीं कर सकते तो उनको विनाश करने का हक किसने दिया? लोगों से पूछना चाहिए, आपके पास क्या ये हक है? अंडा तो खा सकते हो, अंडा बेच दे सकते हो क्या? दे नहीं सकते हो, तो खा क्यों सकते हो? किसी का बच्चा खा गए अपना ऑमलेट बना के मॉर्निंग प्लेट में। तो इस तरह से जो व्यक्ति कर रहा है उससे पूछना चाहिए, अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप धर्म को कभी जीवन में पालन नहीं कर सकते। अंडा खाने वाले व्यक्ति है ना, नवरात्रे आते हैं तो अंडा खाना छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम धार्मिक हैं। वो धर्म बाकी 300 दिन कहाँ चला जाता है? प्याज नहीं खाते बाकी 315 दिन कहाँ चला जाता है 9 दिन के अलावा? लोग मंगलवार को शराब नहीं पीते, बुधवार को क्यों हनुमान जी अप्रकट हो जाते हैं अपनी मूर्तियों से? सोचने वाली बात है। और कभी इस पे लोग विचार नहीं करते, क्योंकि लोग भगवान को तो सिर्फ एक मूर्ति मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा जैसे अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, शादी माम त्वम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान अपने विशेष भक्त जो आपके जीवन में गुरु बनकर आएगा वो प्रकट करेंगे। भगवान आपके हृदय में चैतन्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में और साक्षात गुरु के रूप में तब प्रकट होंगे जब, जिस दिन आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करेंगे। पूरी गीता पढ़ने के बाद भगवान अंतिम में भी बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम, दोकम तिकम चारकम नहीं, सिर्फ मेरी एक की शरण। ये नहीं चलेगा मंगलवार को कृष्ण भगवान, बुधवार को सोमवार, बृहस्पतिवार को विष्णु जी, शुक्रवार को देवी जी, शनिवार को जय शनिदेव, संडे को सूर्य भगवान, सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, दोपहर के वक्त इस्कॉन के कृष्ण भगवान। तो ऐसे जो कर रहे हैं वो कभी इसका मतलब शरणागत हुए नहीं। पूर्ण शरणागति का मतलब है इकला प्रभु कृष्ण। जैसे हमारे माता पिता जीवन में एक ही होते हैं, बार बार नहीं बदलते हैं, ऐसे ही मेरा भगवान एक है, बार बार नहीं बदलता है। तो इस तरह से जब हम शरण में आते हैं तब भगवान हमारे जीवन में गुरु प्रकट करते हैं। तो नारद जी जब प्रकट हुए तो नारद जी ने कहा, अब तुम कुछ मत करो, तुम्हारे जीवन में मैं ज्ञान देना चाहता हूं। कह रहे, कैसे आएगा? कह रहे, बोलो राम राम राम। तो वो क्या बोल रहे थे? मरा मरा मरा। वो कह रहे, अरे तेरे मुंह से तो राम भी निकलना बंद हो गया है, मतलब अपवित्र व्यक्ति के मुंह से हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा। आप कभी चेक करके देखना, किसी नए व्यक्ति को बोलो हरे कृष्ण हरे राम, सुना है? हाँ हाँ सुना है, तो बोलो हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, उल्टा उल्टा बोलेगा। अपवित्र व्यक्ति के मुख से हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं निकलता है, और जब तो बहुत दूर की बात है। तो नारद मुनि ने विशेष कृपा करी, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन पर कृपा कर रहे हैं, और कहा, बोलो मरा मरा बोलो, लेकिन लगातार बोलो। तो उन्होंने बात मानी और कहा, जब तक तुम्हें ज्ञान प्रकट ना हो इस स्थान से उठना मत, तो अपने गुरु की बात को माना। हमारी तरह नहीं है, हम हर बार बोलते हैं और आप लोग हर बार मना कर देते हैं, हम मानते नहीं उसको। जो मानेगा उसके जीवन में ज्ञान प्रकट होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है जो व्यक्ति अपने गुरु की वाणी, अपने जो शिक्षक हैं उनकी वाणी को मानता है, जीवन अपनाता है। तो वहीं बैठे बैठे वाल्मीकि जी ने क्या किया, मराम राम 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 और उनके ऊपर क्या हो गई, चीटियों का एक पूरी दीमक लग गई, एंट हिल बन गया था, और इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि का मतलब है जो चीटियों के उसे घर से निकलता है, एंट हिल से रहने वाले व्यक्ति को, जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। तो इस तरह से उनका नाम, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय संत समाना। संत बन जाते हैं अगर हम गुरु की बात को मानते हैं। एक स्थान पर बैठकर जप करना, हाँ, नियमों का पालन करना, इससे बहुत बड़ी कृपा मिलती है। तो यहां पर बताते हैं एक श्लोक के अंदर गुरु की श्रेष्ठता को बता रहे हैं। कहते हैं भागवतम के अंदर आता है, आचार्यम माम विज्ञान्यान नवा मन्यते करिहचित नामर्त्या बुद्ध्या सुचेता सर्वदेवा मयो गुरु। आर्चयम माम विज्ञान्यम, भगवान के जो आचार्य हैं उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ। गुरुजी से ये नहीं पूछना चाहिए, गुरुजी धंधा मंदा चल रहा है कैसे बढ़ेगा, दुकान बढ़िया नहीं चल रही है, बच्चे नहीं हो रहे घर में, आशीर्वाद दो। तो जहां आशीर्वाद मिल जाए और एक बच्चा हो जाए वहां लाइन लग जाती है, ये गुरुजी बढ़िया, यहां से बच्चे होते हैं। अरे बच्चे तो इनवर्टिलिटी फर्टिलिटी सिंड्रोम वाले जो सोसाइटीज आईवीएफ सेंटर से भी हो जाते हैं, तो वो गुरुजी हैं क्या? या फिर कोई गुरुजी हाथ से कोई चमत्कार प्रकट कर दे, वो तो एक काला जादू दिखाने वाले बंगाल के जादूगर भी प्रकट करते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, प्रभुपाद आप जानते हैं एक संत है हमारे एरिया में, सर पर हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा करंट लगता है, उनकी क्या फीस है? कह रहे उनसे मिलने का 2000 रुपया, सर पर हाथ लगाते हैं तो झंझनाट होती है, करंट लगता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कितने वर्ष की तपस्या है उसकी? कहा 40 साल हिमालय पर रह के तपस्या करके आया है। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है डेविड एक भक्त दे, जाओ और एक वायर लेके आओ, तार, कहा इसको स्विच बोर्ड में लगाओ। उसके दूसरे सिरे को कहा भक्त को जिसने बोला था, इधर आओ, सिर के ऊपर टच किया, करंट लगाओ। लगा वो बहुत जोर से लगा प्रभुपाद। कहा तो फिर जो काम 10 रुपए का तार कर सकता है उसके लिए अपने 40 साल क्यों बर्बाद करने, हाथ से करंट प्रकट करने के लिए 40 साल, आत्मा के लिए कुछ किया नहीं, ना अपने शिष्य को बताया। तो वो गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है जो अपने शरण आश्रित लोगों को कृष्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। वो पिता पिता बनने योग्य नहीं है जो अपने बच्चों को कृष्ण भावना भवित के रास्ते पे नहीं चला सकता, है ना, सोचने वाली बात है। तो गुरु की रिस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए, आर्चयम माम विज्ञान्यान, अपने जीवन में विनम्रता पूर्वक उनकी रिस्पेक्टफुली उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। फिर आगे क्या है, नवा मन्यते करिहचते, अब कभी भी उनका क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। जिसको आपने एक बार गुरु बना लिया उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु बार बार चेंज नहीं होते हैं, जैसे लोग डॉक्टर चेंज करते हैं ना, ये हॉस्पिटल में काम नहीं चला तो दूसरे में तीसरे में, हाँ, तो इस तरह से लोग गुरु से भी बोलते हैं, गुरु जी से अगर काम नहीं चला, धंधा नहीं बढ़ा तो फिर किसी और गुरु जी के पास। तो वो गुरु जी नहीं होते, वो ज्योतिषी होते हैं। आध्यात्मिक गुरु वो है जो कृष्ण भावना भवित का ज्ञान देता है, और एक बार उसको ग्रहण करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और इंद्र को ज्ञान देने के बाद में एक बार वो बृहस्पति इंद्र की सभा में आए, और इंद्र ने क्या सोचा, अरे यार आजकल तो बड़ी दिक्कत चल रही है, हाँ गुरुजी आ गए, इनके आने से कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो उसने बिना ध्यान दिए गुरुजी का अपमान कर दिया, मतलब इतना अपमान किया कि अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। तो जब कोई आपसे आध्यात्मिक प्रगति किए हुए व्यक्ति आपके जीवन में आए तो कहते हैं हमें उसके सामने क्या करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। क्यों? कहते हैं जो आत्मा का जो चेतना स्तर है ये भी आत्मा सच्चिदानंद है, तो ये भक्त को देखने मात्र से ऊपर को टंग जाती है, और उससे क्या हो सकता है, हमारी हेल्थ डिटोरिएट होती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए बड़े व्यक्ति का सम्मान करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। लोग प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन भक्तों का सम्मान करने के लिए खड़े नहीं होता है। इसलिए वैष्णव सदाचार पुस्तक में लिखा है कि कभी भी आप किसी सन्यासी किसी महान भक्त को देखें तो उसके सामने खड़े हों और उसके बाद दंडवत प्रणाम करें। हाँ, जीवन में उनको प्रणाम भी करना चाहिए। तो गुरुजनों का बहुत महत्व है, ये नहीं आज गुरु बनाए कल बदल लिए फिर बदल लिए। तो उनका पूरे जीवन ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। तो इंद्र ने यही कि अनादर कर दिया, और अनादर करने से क्या हुआ, बृहस्पति जी रुष्ट हो गए, वो बुरा मान गए कि मेरा शिष्य कैसा है, मुझे सम्मान नहीं देता, और वो चले गए। और उनके सिर्फ अपमानित महसूस करने से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ महसूस करने मात्र से बलि महाराज जो कि असुरों के राजा थे, उन्होंने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। आज तक इंद्र जीत रहा था, लेकिन अब इस बार इंद्र हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसने गुरु की अपमान किया। गुरु के अपमान मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो अर्जुन के जीवन में अभी तक कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं बोला। हम जब से एक साल से भगवद गीता पढ़ रहे हैं, अभी तक कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी अर्जुन उनको बड़े सारे तर्क दे रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन भगवान तब बोलना शुरू कर रहे हैं जब अर्जुन ने कहा बस अब मेरे तर्क समाप्त, अब मैं चुप रहूंगा, अब आप बोलेंगे। जब आप बोलने का मौका देंगे तब गुरु बोलते हैं। गुरु जबरदस्ती आपके घर में आके नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। डॉक्टर तब बोलता है ना जब आप उसके केबिन में अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, या आपके घरों पे आके बोलता है चेक करवाओ आपको कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, बोलता है ऐसे आके। तो ऐसे ही गुरु भी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स जो हैं वो घर आके नहीं बोलते हैं। आपको अगर उन्हें घर बुलाना है तो आपको उनको फोन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, घर बुलाना पड़ेगा, और फिर वो आपको आकर सजेशन देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से तो इंद्र का क्या हुआ, सारा श्रीहीन हो गया। आपके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का अपमान करते हैं। वैसे तो हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके अपने गुरु का तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं ना मर्त्य बुद्धाय असुचेत। कभी भी गुरु को एक साधारण पुरुष नहीं मानना चाहिए। देखने में तो लगेगा इनके भी तो दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, अरे अरे गुरु जी आपको है ना मालूम नहीं है, एक्चुअली मैं ज्यादा समझदार हूं, मैंने MBA किया हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ स्ट्रेटेजी कैसे लगानी चाहिए, हाँ ये कर लो ना। तो फिर इस तरह से गुरु को सजेशन देने लग जाते हैं। अब सोचो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो अपने गुरु को शिक्षा देने लगा। आया किस लिए था? शिक्षा लेने के लिए। क्या करने लगा? शिक्षा देने। उसको लगा ये तो कृष्ण कृष्ण के अलावा कुछ जानते नहीं, जब पूछो तब कहते हरे कृष्ण, जब पूछो तब गीता भागवत, बस इनको तो पता नहीं संसार में कितना कुछ चल रहा है। वो गुरु को ज्ञान देने लग जाते हैं। आप दे सकते हैं, लेकिन अगर गुरु पूछे अच्छा बताओ मेट्रो के टिकट का किराया कितना है, तो आप बोल सकते हो इतना है, लेकिन ये नहीं होता कि आप उसको ज्ञान देने लगे। अरे आपको कुछ नहीं पता गुरु जी, आजकल तो बड़ा बुरा हाल है, गुरु जी को सब पता है, लेकिन वो बने हुए हैं आपके सामने कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो अपने गुरु के क्या हैं, शिष्य हैं, और वो क्या कहेंगे मुझे कुछ नहीं पता है, उनको सब पता होता है, हैं? लेकिन आपको लगता है मुझे सब पता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है। हाँ, तो उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। और सर्व देवा मयो गुरु, और मेरे गुरु कैसे हैं, सभी देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब एक गुरु के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। अगर वो सच्चा व्यक्ति है, कृष्ण भावना भवित है, उसके जीवन में उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, लेकिन वो किसके शरणागत है? कृष्ण के शरणागत है। तो हमको भी इस तरह से अपने जीवन में उस व्यक्ति के शरणागत होना चाहिए जो स्वयं कृष्ण के शरणागत है। कहते हैं चिंता मणि लोक सुकम सुरादारु स्वर्ग संपदा प्राच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, गुरु कैसे हैं आपके जीवन में अगर आ जाए तो चिंतामणि, चिंतामणि समझते हैं, ऐसी मणि है जिसके सोचने मात्र से आपके घर में सब कुछ प्रकट हो सकता है। आप सोचें चिंतामणि रत्न अगर मिल जाए ना, और आप सोचें मेरे घर मर्सिडीज कार हो, टंग मर्सिडीज कार आ गई, वाह। चिंता मणि सोचने मात्र से प्रकट करने वाली मणि को चिंतामणि, चिंतामणि लोक सुखम, और जो स्वर्ग लोक है ना उसका सुख प्रदान करने वाली चिंतामणि। आप बोले मुझे स्वर्ग का राजा बना दे, बना देगी। तो चिंतामणि लोक सुखम, हाँ सुरादारु स्वर्ग संपदा, और जितने देवता हैं उनके स्वर्ग की संपदा प्रदान करने वाली समता रखते हैं गुरुदेव। प्रयाच्छति गुरु प्रीतो, और अगर आपकी गुरु के अंदर प्रीति है, वैकुंठ योगी दुर्लभम, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वैकुंठ प्राप्त होगा, जो कि बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी गुरु को शरणागत नहीं किया। वो तो क्या है, योगी बने बैठे हैं। मैं अपनी शक्ति से अपने योग बल से भगवत धाम जाऊंगा तो अपने दम पर कोई नहीं जा सकता, उसको शरणागति के मार्ग के द्वारा ही जाना संभव है, अन्यथा नहीं है। जो व्यक्ति शरणागत नहीं होगा वो व्यक्ति कभी भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो कैसा है, विनम्रता पूर्वक अपने जीवन को जीता है। जो अहंकार पूर्वक जीता है तो भगवान कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, मैं उस व्यक्ति का ईगो खाता हूँ, उसको खा जाता हूँ, ईगो को, अहंकार को खा जाता हूँ व्यक्ति के। हाँ, और उसके बाद फिर व्यक्ति क्या होता है, सड़क पर आ जाता है। यहाँ तक कि गोपियों के अहंकार को भी भगवान स्वयं विराजमान होने के बाद, प्रकट होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। सारी गोपियां और राधा रानी वृंदावन में घूम रहे थे और राधा रानी और गोपियों ने क्या सोचा, गोपियां सोचती हैं कृष्ण राधा के साथ तो बहुत लंबा समय बिताते हैं लेकिन हमारे साथ तो कुछ पल हंसी मजाक करके निकल जाते हैं। तो इसका मतलब उनके मन में क्या आया, जेलेसी आई, द्वेष आया कि हम जो है क्या है, राधा रानी बढ़िया है। तो जब यह सब मन में आया तो कृष्ण भगवान ने सोचा चलो मैं गोपियों के साथ में रहने लगूं। तो भगवान गोपियों के साथ समय गुजारने लगे। अब गोपियों को बड़ा अहंकार हुआ कि भगवान तो हमारे साथ रास करते हैं, हमारे साथ डांस करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, झूलन उत्सव मनाते हैं, हमारे साथ ऐसा उत्सव मनाते हैं, विहार लीलाएं करते हैं, जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। अब तो बड़ी अहंकारी हो गई। उनके अहंकार मात्र से भगवान ने क्या किया, वहां से अदृश्य हो गए और राधा रानी भी अदृश्य हो गई क्योंकि राधा रानी के मन में अहंकार नहीं आया था। लेकिन जैसे ही राधा रानी स्वयं भगवान की अंतरंग शक्ति, उन्होंने सोचा मैं गोपियों से ज्यादा बढ़िया हूं। क्यों? क्योंकि सारी गोपियों को त्याग करके भगवान आप किसके पास आ गए, मेरे पास आ गए। और उसी पल वहां से भगवान अदृश्य हो गए। अब राधा रानी अकेली व्रजमंडल में घूमने लगी, कहां कहां गए कृष्ण। तो गोपियों को आकर पूछा तुमने देखा गया कृष्ण को, कह रहे नहीं कृष्ण तो तुम्हारे साथ चले गए थे हमें त्याग करके। तो इस तरह से भगवान उस व्यक्ति के जीवन से निकल जाएंगे। आप कहेंगे आजकल माला अच्छी नहीं होती है, पहले तो बढ़िया होती थी। तो आपको अपना चेक करना चाहिए, चेक बैलेंस। एक शीट बनानी चाहिए एक भक्त को अपने घर में, उसमें लिखना चाहिए आज मैंने कितना जप किया, आज मेरी विनम्रता कितनी थी, आज मैंने अपने जीवन में किसी से द्वेष तो नहीं किया, आज मैंने क्या श्रवण किया, आज मैंने क्या अध्ययन किया, आज मैंने भोग लगाया नहीं लगाया। ऐसे 10 पैरामीटर लिख के रखे अपने नोट्स कॉपी में और रोज उसमें फिल करें। हम करते हैं, सारे भक्त इस्कॉन में जो ऑथराइज डिवोटी सब भरते हैं इसको। तो जो भरेंगे उन्हें पता रहता है, चेक बैलेंस करते हैं कहां कहां पर मैं अपने पैरामीटर से नीचे गिर गया हूं, शिष्य बनने योग हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। और शिष्य नहीं बनेंगे तो भगवान कभी बोलेंगे ही नहीं जीवन में, ये मूर्ति ऐसी की ऐसी खड़ी रह जाएगी। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं प्रहलाद के लिए भगवान आ गए, ध्रुव के लिए भगवान आ गए, अम्बरीश के लिए भगवान आ गए, हमारे लिए क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? शरणागति की प्रॉब्लम है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्धन्ते ताम स्ततेव भजामि अहम्, मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्धन्ते, जितनी परसेंटेज में आप भगवान के शरणागत होंगे ताम स्ततेव भजामि अहम्, मैं उतना उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होऊंगा। मूर्ति के मूर्ति बने बने टाइम गुजर जाएगा, कभी भगवान प्रकट नहीं होंगे ना बात करेंगे। तो भगवान तभी बात करते हैं जब हमारी शरणागति भगवान के भगवान के भक्तों में, भगवान में हो जाती है ना। आप देखिए श्रील प्रभुपाद 1922 में पहली बार भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले और उन्होंने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहली बार देखते ही कहा, जैसे आज मान लीजिए पहली बार कोई प्रवचन सुनने आया हो और उस प्रवचन में उन्होंने कहा आप लोग अंग्रेजी जानते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, पाश्चात्य देशों में प्रचार करना चाहिए। कब बोला? 1922। और उसके बाद 1933, 10 साल तक वो दोबारा प्रभुपाद जी उनसे मिले ही नहीं क्योंकि उस समय ईमेल नहीं होते थे, नेट्स नहीं होते, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, तो मिला मुलाकात ही नहीं हुई। और बस उसके बाद में 10 साल तक श्रील प्रभुपाद अभय चरण सोचते रहे कब मैं मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। 1933 में जब मिले उनसे तो उन्होंने पूछा गुरुदेव मैं 10 साल से आपके उस लेक्चर को आज तक याद करता हूँ, स्मरण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु मैं आज तक स्मरण करता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे याद है तुम्हारा नाम अभय है, आपको याद है क्या? हाँ, जो व्यक्ति तुम्हें लेके आया था उन्होंने कहा इनका नाम अभय है। तो कहा आप मुझे कुछ आदेश दीजिए, कह रहा मेरा आदेश वही है जो मैंने 10 साल पहले दिया था, तुम अंग्रेजी जानते हो पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, जब समय मिले पैसा मिले पुस्तकें छापो और उनका वितरण करो। ये बात बोलकर 1933 में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को दोबारा ये संदेश दिया। प्रभुपाद जी ने पूरे आजीवन तक इस संदेश को अपने हृदय में लगा के रखा, प्रयास करते रहे विफल होते रहे, प्रयास करते रहे विफल होते रहे। 1965 कितने साल बाद, 1922 में आदेश मिला, 1965 में पूरा हुआ। 43 years, 43 साल तक उन्होंने अपने हृदय में उस संदेश को बिठा के रखा कि मैं पूरा करूंगा। और आप देखिए कि जब 1966 में वो वहाँ 1965 में वो पहुंचे, तो उसके बाद भी ये नहीं कि इस्कॉन केंद्र बन गए बड़ी आसानी से, एक साल तक अथक प्रयास किया और उसके बाद जाकर ऐसा रंग आया, ऐसा रंग लाए कि जगह जगह व्हाइट हाउस के आगे जहां पर आप फोटो खिंचाएं तो पुलिस वाला हटा देगा, 10,000 लोगों ने रथ यात्रा निकाली स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ऐसा तब हो पाता है, कब होता है, जब व्यक्ति क्या है, पूर्ण रूप से शरणागत है। श्रील प्रभुपाद ये सोच सकते थे मेरे गुरुदेव को क्या पता, इन्होंने तो बोल दिया, पैसा कौन देगा, टिकट कौन देगा, पैसा ये देंगे कौन देगा, ये सब से सोचता है ना वो प्रचार कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। और जो प्रचार नहीं करेगा वो भगवान का प्रिय कभी नहीं बन सकता। भगवान का प्रिय वही है जो भगवान के संदेश को दूसरों को बताता है, चाहे एक को बचाए, चाहे 1,000 को बताए, 10,000 को बताए, लेकिन बताने वाले व्यक्ति को भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो आप ये देखिए, ये है गुरु के शरणागत होना। एक संदेश का उन्होंने आजीवन तक उसको पालन किया, है ना। और हम अगर पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ना कृष्ण आएंगे ना गुरु आएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरु कौन है, तो गुरु कौन है यहाँ पर बताया गया है, इसी श्लोक के अंदर लिखा है, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नए, ए कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। कौन है गुरु? किबा विप्रा, हो सकता है कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, किबा न्यासी, हो सकता है वो सन्यासी हो, शूद्र के नए, हो सकता है कि वो शूद्र घर में पैदा हुआ हो। ए कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण को कैसे जानता हो, तत्व से जानता हो। तत्व का मतलब क्या है बता सकता है कोई? तत्व माता जी, तत्व का मतलब नहीं बता, तत्व मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट होता है ना, ये पूछते हैं ये किस एलिमेंट का बना हुआ है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तत्व। हाँ, तो तत्व का मतलब है एलिमेंट। तो भगवान का जो तत्व है वो है कृष्ण तत्व। हाँ, तो इसी तरह से शक्ति तत्व जिससे दिधारी उधारी देवियां बनती हैं, शक्ति तत्व, शिव तत्व जिससे शिव बने हुए हैं, और इन सारे तत्वों का सर्वोपरि तत्व है कौन सा? कृष्ण तत्व। तो जो कृष्ण तत्व को जानता है कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, वो क्या होते हैं, सदा प्रकट होते हैं, ये जो चीज जानता है, उनका भौतिक शरीर नहीं होता, उनके शरीर में कट नहीं लगते, खून नहीं निकलता, उनके शरीर से मल नहीं निकलता, बदबू नहीं आती है, पसीना नहीं आता है, वो सच्चित आनंद विग्रह है, जो उनके शरीर को जानता है तत्व से, वो व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। ये श्लोक में लिखा है, सही गुरु है, वो गुरु है जो ये कहता है कि सारे भगवान हैं, बराबर है, किसी को भी पूज लो, कोई भी मंत्र ले लो, उसको खुद ही नहीं पता कृष्ण तत्व के बारे में, तो वो गुरु बनने योग नहीं है। कहता है कृष्ण नाम के एक मनुष्य आए थे, बाल लीला करी थी, रास लीला करी थी, हाँ, लेकिन भगवान कौन है? भगवान निराकार है। तो वो जो तत्व से जानते ही नहीं है भगवान को, वो क्या गुरु बनेगा? हाँ, भगवान ने गीता में कहा, जन्म करम चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, त्यागतम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुवर्जना। तत्व से जो मुझे जान जाएगा मेरे जन्म को और मेरे कर्म को, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वापस मेरे धाम को आएगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए इस श्लोक से कि अर्जुन शोकाकुल अवस्था में इसीलिए हैं क्योंकि वो भगवान को कैसे नहीं जानते हैं, तत्व से नहीं जानते हैं, वो अभी भगवान को शारीरिक रूप से जानते हैं। तो हम सब भी शारीरिक रूप से जानते हैं, इसीलिए उलझुल प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना, कुरुक्षेत्र में इतनी सारी पब्लिक कैसे आ गई जब स्थान तो छोटा सा है, भगवान वृंदावन से नंदगांव से वृंदावन जाते थे ट्रक से पैदल जाने में, ऑटो से जाने में 15 किलोमीटर का रास्ता है, भगवान रोज पैदल 5 साल की उम्र में कैसे जाते थे? ये सारे प्रश्न वही पूछते हैं जो तत्व से कृष्ण को नहीं जानते। जो जानेंगे ब्रह्मांड को नचाने वाला ब्रह्मांड नायक है, वो 15 किलोमीटर एक कदम में पार नहीं कर सकता, ही कैन डू इट। तो तत्व से जो जानेगा वो गुरु है, वही सच्चा शिष्य है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पंच तत्व गौर निताय की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की जय। पदे दबावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय।